તારીખ 21/12/1997 પૂજ્ય બહેનશ્રીના વચનામૃત બોલ નંબર 51 અને 50 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું મદ્રાસમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 392
બહેનશ્રી કે વચનામૃત વચનામૃત 51 પેજ 18 મુમુક્ષુ કો પ્રેરણા દિયા હૈ ઇધર આત્મકાર્ય કરને કી જો પ્રેરણા હૈ ये वचनामृत का विषय है। आकाश पाताल भले ही एक हो जाए परंतु भाई अपना ध्येय को तू मत चुकना। क्या कहते हैं? ध्येय है आत्मकल्याण करने का। वो आत्मकल्याण करने में कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए, आकाश पाताल एक हो जाए, इसका मतलब क्या? कि बहुत संयोगों का संयोग का बहुत बड़ा है फेरफार हो जाए, सब अनुकूलताएं चली जाए, फिर भी अपना जो ध्येय है, अपना जो कार्य है, वो हमेशा हमेशा चालू रखने का है। हर हालत में अपना कार्य चालू रहना चाहिए। ये इसलिए कहते हैं कि बहुभाग धर्म साधन करने वाले लोग कुछ उपाधि आ जाती है तो उस तरह से सोचते हैं कि इतना थोड़ा उपाधि दूर हो जाए ना, फिर शांति से अपना काम करेंगे। अभी अशांति बढ़ जाती है तो काम नहीं कर सकते। ये गलत अभिप्राय है, ये अभिप्राय सही नहीं है। तो कोई इस तरह से लेते हैं कि बड़ा काम हाथ में है, फिर अनुकूलता बढ़ जाएगी, वो काम निपटेगा तो अनुकूलता भी बढ़ जाएगी, फिर शांति से काम करेंगे। वो भी गलत अभिप्राय। हमारे आत्मकार्य के लिए हमें किसी भी प्रकार की अनुकूलता को भी देखना नहीं है और न किसी प्रकार की प्रतिकूलता को भी देखना नहीं है। ये तो उपदेश के वचन हैं। वास्तविक भूमिका आत्मकल्याण करने वाले की ऐसी ही होती है। रुचि कभी अनुकूल प्रतिकूलता को देखती ही नहीं। रुचि कभी नहीं देखेगी, चाहे संसार में किसी भी कार्य की रुचि हो, वो अनुकूलता प्रतिकूलता को नहीं देखेगी। जैसे किसी को शौक होता है, खर्च ज्यादा हो जाता है तो उसमें कर लेता है, और जगह संक्षेप कर लेगा खर्च करने का, लेकिन अपना शौक का विषय है वहां तो खर्च कर लेगा, बाकी और जगह कैसे भी चला लेगा। इसका मतलब क्या हुआ? कि हमको जो करना है वो करना है, उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता हमको देखनी नहीं है। होता है कि नहीं होता है? वैसे जिसको आत्मकल्याण करना है वो उसकी रुचि ऐसी होती है कि वो अनुकूलता प्रतिकूलता को देखता ही नहीं है और देखने वाले को रुचि नहीं है। तेरा प्रयत्न को नहीं छोड़ना, ध्येय को छोड़ना नहीं और ध्येय के अनुसार जो पुरुषार्थ है प्रयत्न है उसको भी नहीं छोड़ने का। हर हालत में पुरुषार्थ चालू रखना है, आत्मार्थ को पोषण मिले पुष्टि मिले यह कार्य करना, मतलब आत्मार्थ विरुद्ध कार्य मत करना, आत्मार्थ को पुष्टि मिले वैसा कार्य करना और हमारे आत्मार्थ को हानि पहुंचे ऐसा कोई कार्य नहीं करना, अस्थि में से नास्ति ले लेना है। जो जिस ध्येय को ध्येय के पीछे तुम लग गया है उसको पूर्ण करके ही रहना, जैसे आत्मकल्याण का ध्येय है पूर्ण शुद्ध होने का ध्येय है तो करके ही रहना है, उसमें पीछे हट नहीं करना है। और ऐसे अभिप्राय में जरूर सिद्धि होगी ही, यानी सफलता मिलेगी ही, नहीं मिले ऐसा नहीं बनेगा, ये गारंटी देते हैं ज्ञानी कि जो अपने ध्येय के पीछे लगा रहता है, यानी ध्येय की लगन जिसको है उसको तो कार्य सिद्धि होती ही है। लगन नहीं होती उसकी बात अलग है, जो जिसको लगन होती है वो इसके पीछे लग जाता है, लगन नहीं होती है तो जब ही मन में आए तभी करता है, कभी प्रयास करता है कभी छोड़ देता है, कभी करता है कभी छोड़ देता है, ऐसा चलता है। ऐसे लोगों का काम नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि उसको मूल्यांकन आया ही नहीं। जो सिद्धि होने वाली है उसका मूल्यांकन नहीं आया, वरना जीव का ऐसा स्वभाव है कि जितना बड़ा लाभ होवे उतना ही बड़ा परिश्रम करने के लिए वो तैयार हो जाए। होता है कि नहीं होता है? जितना लाभ ज्यादा उतना परिश्रम करने की तैयारी भी ज्यादा ही होती है, ये जीव का स्वभाव है, रह ही नहीं सकता। यहां नहीं लगता है, लगन नहीं लगती है, इसका मतलब ये हुआ कि मूल्यांकन नहीं आया कि मुझे कितना लाभ होने वाला है और कितना बड़ा नुकसान से मैं बचने वाला हूं, दोनों बात उसकी समझ में नहीं आई। नुकसान मैंने दुख और लाभ माने सुख, कितना दुख से बचूंगा और कितना सुख मुझे मिलेगा वो बात समझ में नहीं आई, खरी समझ नहीं है। समझ में आई फिर भी नहीं आई के बराबर ही है, वरना पुरुषार्थ चले बिना रह नहीं। ये बहुत वास्तविक है। और जिसको ऐसा नहीं होता, वो वास्तविकता में नहीं आया, इसका मतलब वो कल्पना में चलता है, कहीं भी कल्पना में चढ़ गया है, ये बात जरूर है। तो इस तरह से इस वचनामृत में मुमुक्षु जीव को पुरुषार्थ की प्रेरणा दी है। और वो अपने अनुभव से दी है। ऐसी बात जो लिखते हैं इसके पीछे कौन सा बैकग्राउंड है कि वो है कि वो अपना अनुभव को बताते हैं। भले ही यहां कहते नहीं है कि मैंने ऐसा किया था या मुझे ऐसा ही हुआ था, लेकिन बात वैसी है कि उन्होंने भी जब निर्धार किया आत्मकल्याण का तो इतना बलवान निर्धार किया था कि भले ही आकाश पाताल एक हो जाए, हमको हमारा कार्य करना है। और बहन श्री के जीवन वृतांत को देखे तो बात समझ में आ जाती है। 15 साल की छोटी उम्र में जब उन्होंने निर्धार किया कि मुझे मेरा आत्मकल्याण करना है, जीवन में मेरा कोई दूसरा ध्येय है ही नहीं, छोड़ दिया घर, कराची में रहते थे और कराची में सत्संग अवेलेबल नहीं था, सत्संग उपलब्ध नहीं था वहां। वहां तो वैसे ही मुसलमानों की बस्ती ज्यादा थी पहले से, और कोई साधु संत कोई ज्ञानी पुरुष वहां मिले नहीं। निर्णय पक्का कर लिया कि अपने वतन में चले जाना है, वहीं मिलेगा। और रजा लेवे तो इजाजत देवे तो देने वाले कोई थे नहीं, वो बात मंजूर करने वाले थे नहीं कोई, छोड़ दिया घर, बिना पूछे निकल गए घर से, बिना सामान लेकर के, खाने का पीने का रास्ते में कोई व्यवस्था कुछ नहीं किया। इतना साहस 15 साल की उम्र में कोई लड़की अगर करती है, सोच लेना, आज से करीब 70 साल पहले कैसा जमाना था। वो साहस जिसने किया उसको लगन कितनी होगी, अपने आत्म कार्य के लिए कितनी लगन होगी कि बस इसके पीछे लग गए। और कार्य सिद्धि हुई भी, जब कार्य सिद्धि हुई तो यहां वो बात को लिखी है कि कार्य सिद्धि होगी ही, नहीं होगी ऐसा बनने वाला नहीं है। कहां से गारंटी देते हैं, कहां से देते हैं, अपने अनुभव से देते हैं। कृपालु देव तो ऐसे कहते थे कि यथार्थ सत्संग मिले पत्रांक 609, यथार्थ सत्संग मिले और आत्मकल्याण होवे नहीं, ये इस जगत में 11वां आश्चर्य है, बन ही नहीं सकता। और सफलता होगी इस विषय में हमारा आत्म साक्षात्कार क्या है, हमारा आत्म साक्षात्कार है ऐसी गारंटी दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि संसार के कार्यों का क्या होगा, और संसार के कार्यों की जो जिम्मेवारी है इसका क्या, ये बात आड़े आती है आत्मकल्याण में, सबको आती है, कोई किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, सबों की यही हालत है। और परिवार वाले भी वही कहेंगे, देखो आपकी जिम्मेवारी है, ये जिम्मेवारी आपकी है, आपको निभानी है। प्रेशर भी आता है और हमारी रुचि भी होती है, बस खत्म बात। एक तो खुद की रुचि पड़ी है और दूसरा प्रेशर आता है, फिर बहानेबाजी क्या होगी, क्या करें, हमारे पर इतना दबाव है, इतना प्रेशर है, हमको सब निभाना करना पड़ता है। लेकिन मिथ्या अभिप्राय वो है उसमें कि मैं करूंगा तो होगा ही मेरा कार्य संसार का, मेरे पुरुषार्थ के अधीन है, मेरे प्रयत्न के अधीन है। और उसमें असफल होता है तो भी विचार नहीं करता कि ऐसा क्यों हुआ, वो विचार नहीं करता। और सफलता मिलती है तो अपनी अक्ल होशियारी से काम हो गया, रस चढ़ जाता है। क्या होता है, रस चढ़ जाता है। और हमारे हिंदुस्तान में जो भी बाहर के भौतिक तरक्की में आए उनकी यही हालत है कि आज से 50 साल पहले कोई खास बात नहीं थी, हम हमारे वतन को छोड़ करके, जन्मभूमि को छोड़ करके इधर 1000 माइल दूर क्यों आए, अगर वहां रोटी मिलती तो इधर कोई आते नहीं, इसका मतलब कि वहां रोटी की कोई व्यवस्था नहीं थी। और यहां तो सब कुछ हो गया, व्यवस्था तो उसका रस चढ़े बिना रहेगा कैसे, आज इतना मिला, कल उतना मिला, फिर परसों इतना मिला, फिर वो मिला, वो मिला, वो मिला, वो मिला, इसका रस चढ़े बिना रहेगा कैसे, चढ़ जाएगा। और वो रस लिया है ये सिवाय पॉइजन, जहर के सिवा और कुछ नहीं है। क्यों, कि इसको छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसमें जो अपनत्व किया है, इतना परिश्रम से इतना काम किया, अब आप बोलते हैं कि उस पर ममत्व नहीं करना, कैसे हो सकता है। और जिम्मेवारी तो है ही, वो आत्मकल्याण नहीं कर सकता, उसका आत्मकल्याण कभी होने वाला नहीं है जब तक ऐसा अभिप्राय है महात्मा, तब तक। यहां तो कहते हैं कि आकाश पाताल एक हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमको हमारा काम करना है। जिम्मेवारी क्या हम कर ही नहीं सकते, पर पदार्थ का कार्य, संयोग का कार्य कौन कर सकता है, अन्य द्रव्य को कौन, उसका परिणमन कौन कर सकता है, कर ही नहीं सकता। फिर जिम्मेवारी किस बात की, जो होने वाला होता है, जो नहीं होने वाला नहीं होता है। एक ही आदमी का जीवन में चढ़ाव उतर आता है कि नहीं आता है, तो जब निष्फलता को प्राप्त होता है तो क्या अक्ल चली जाती है क्या, और सफलता होती है उस वक्त कोई अक्ल आ जाती है बाहर से, क्या होता है कभी ऐसा, होता ही नहीं। सही बात वो है कि ध्येय क्या है जीवन में, ध्येय की बात लिखी ना, जीवन का ध्येय क्या है। अनंत काल में दुर्लभ ऐसा मनुष्य भव किसके लिए मिला। संसार के कार्यों में संसार की तरक्की करने के लिए मिला या आत्मकल्याण करने के लिए मिला, विचार कर लेना है। जिसको जिसकी होनहार अच्छी है, यानी कोई सुपात्र है, योग्यता वाला जीव है, उनको ऐसा लगता है कि मेरा ये मनुष्य भव अनंत भव का नाश करने के लिए मुझे मिला है, इसलिए मेरे सामने ये अनंत भव को नाश करने वाली बात मेरे सामने आई है। सारे जगत में चक्कर लगा लो, आत्मकल्याण की ऐसी बात कहीं नहीं है। जो हमारे ज्ञानी पुरुषों ने कही जन्म मरण से मुक्त होने की बात, आत्मज्ञान की बात, वो जगत में कहीं नहीं है। सभी धर्म संप्रदाय में रूढ़िगत क्रियाएं चलती है। आत्मकल्याण कैसे हो वो बात नहीं चलती है। जब ये बात हमारे सामने आई है तो हमको उसका अच्छी तरह लाभ उठा लेना चाहिए। इसलिए उसको ध्येय बना लेना चाहिए। अगर नहीं बनाया है तो, बनाया है उसको तो प्रयत्न चलेगा चलेगा और चलेगा। संसार का ध्येय बिना का कोई मनुष्य नहीं है, कोई जीव नहीं है संसार में। एक आत्मार्थी और ज्ञानी को छोड़ करके सभी मनुष्यों को अनादि से संसार का ही ध्येय है, और इसके पीछे इसका प्रयत्न भी चालू रहता है हमेशा, क्योंकि ये भी जीव का स्वभाव है। ध्येय के को अनुसरण करके परिणमन चलना ये जीव का स्वभाव है, इसलिए ऐसा ही चलता है। अभी ध्येय बदलना है, ध्येय बदलना है, पूरी बात सोच करके समझ करके अच्छी तरह विचार करके ध्येय बदलना है। ये बात जरूर आड़े आएगी कि ध्येय बदलने से फिर हमको संसार की प्रतिकूलताएं आ जाएगी तो क्या करेंगे। वो तो प्रारब्धाधीन है, अनुकूलता प्रतिकूलता प्रारब्धाधीन है, और कोई बात उसमें है ही नहीं। चाहे सावधानी रखो चाहे सावधानी मत रखो, आत्मार्थी को ऐसा विचार कर लेना चाहिए कि मुझे मेरे जीवन में एक आत्मकल्याण करना है, यही एक मेरा ध्येय है। संयोग की जो परिस्थिति है वो पूर्व कर्म अनुसार जैसे होने वाली होगी वैसी होगी। हमारे शेष जीवन में बाकी आयुष्य में हमको इतनी दरकार नहीं करनी है, कि हम हमारे आत्मकल्याण के ध्येय को छोड़ दें। मानो के प्रतिकूलता आ गई तो क्या हो गया, कीमत किसकी है, आत्मकल्याण की है या प्रतिकूलता की है, किसकी है? और ये प्रतिकूलता भी काल्पनिक है और कुछ नहीं है, वास्तव में अनुकूलता प्रतिकूलता जैसी कोई चीज है ही नहीं, है ही नहीं, कल्पना है। देखो, हम हरेक मनुष्य की आर्थिक स्थिति जो है न कोई टॉप लेवल की है न कोई बॉटम लेवल की है, है देखो हमारे से अधिक श्रीमंत भी मिलेंगे और हमारे से कमजोर लोग भी मिलेंगे। जब हमारा विचार हमारा लक्ष्य जाता है नीचे वाले के पर, तब हमको लगता है कि चलो हम तो हम हमारे को तो अच्छा है, इन लोगों से तो बहुत अनुकूलता है, अनुकूलता का अनुभव करेगा। ऊपर वाले को देखेगा, अरे अपने पास वो नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, इसके पास वो है, हमारे पास वो नहीं है, ये बहुत भाग्यवान है, हम तो कम नसीब वाले हैं, ऐसे ऐसे महसूस करेगा। सच क्या है, सच क्या है? अनुकूलता लगी वो सच है या प्रतिकूलता लगी वो सच है? स्थिति तो जो है वो है, क्या है? जीव कल्पना करता है और कुछ नहीं है। एक ही परिस्थिति में खुशी भी मनाता है और नाराज भी होता है। तो ज्ञानी कहते हैं ये जीव की कल्पना मात्र है और कुछ नहीं है। हमारा शेष जीवन पूर्व प्रारब्ध अनुसार जैसे कैसे भी बीतना होगा वैसे बीतेगा, हमको यही करना है। ऐसा एक ध्येय बना लेना चाहिए। तो इस मनुष्य भव की कीमत किसी भी प्रकार से कहीं नहीं जाए, इतनी बड़ी है। कितनी बड़ी है कि इसकी कोई कीमत कर नहीं सके, इतनी बड़ी है। अगर ऐसा ध्येय नहीं बदला और संयोग के पीछे लगे रहे, संयोग को बढ़ाना सुधारना और उसको संभालना, ये मनुष्य की कीमत, मनुष्य भव की कीमत एक फूटी कौड़ी के बराबर है। कितनी है? एक फूटी कौड़ी के बराबर है, इससे ज्यादा नहीं है। ये प्रेरणा दिया है इधर कि अपने ध्येय को बदल करके ध्येय का अनुसरण करने के पीछे लग जाओ, एक लगन से आपका काम हो जाएगा, जैसा हमारा हो गया वैसा। ऐसा ज्ञानी गारंटी से बात करते हैं। उसमें अविश्वास करने लायक कोई बात नहीं है। ये 51 नंबर का वचनामृत है, इसके ऊपर एक 50 नंबर का वचनामृत है, उसमें भी प्रेरणा भी दी है, उसमें भी प्रेरणा दिया है कि तुम सत की गहरी जिज्ञासा कर। जिज्ञासा मैंने प्राप्ति की भावना, भावना को जिज्ञासा भी कहते हैं, जिज्ञासा को भावना भी कहते हैं। सत की मैंने सत स्वरूप की प्राप्ति की, स्वरूप प्राप्ति की गहरी भावना, बहुत तगड़ी भावना कर तुम। कृपालु देव ने एक पत्र लिखा है, 693 नंबर का पत्र है, उसमें ज्ञान मार्ग, क्रिया मार्ग और भक्ति मार्ग की चर्चा की है, तीन पैराग्राफ में। पत्र तो सो छोटा सा है, लेकिन एक एक वचन में बहुत बात भरी हुई है। तो सबसे पहले ज्ञान मार्ग की चर्चा की है। ये तीन बात लिखने के पीछे अभिप्राय वो है कि कुछ लोग ज्ञान के पीछे लगते हैं, क्रिया और भक्ति का कोऑर्डिनेशन नहीं देखा जाता, मेल नहीं देखा जाता। कुछ है, इसलिए कि ये तो मुमुक्षु को करने योग्य है, इसलिए। लेकिन वो भक्ति भी एक क्रिया है, पर उसके साथ ज्ञान का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सही बात तो वो है। अपने को तो एक यहां जो पॉइंट है उसको लेना है कि उस पत्र के पहले वाक्य में वो बात लिखी है कि परम अवगाढ़ता आए बिना ज्ञान मार्ग पर कोई चलना चाहता है तो उसको गिरने का बहुत बहुभाग तो गिरने का ही बनता है, और किस किस प्रकार का उसको नुकसान होता है वो बात लिखी है। अब परम अवगाढ़ता माने क्या, कि जिसको सत्संग, स्वाध्याय, शास्त्र पढ़ना, जिसको ज्ञान का मार्ग पकड़ना है, उसको आत्मकल्याण की परम अवगाढ़ भावना पहले होनी चाहिए। ये सूचना है। तो आत्मकल्याण की तीव्र भावना तो हुए नहीं, यहां उंडी जिज्ञासा लिया ने और शास्त्र पढ़ डाले, जो भी ग्रंथ हाथ में आए पढ़ ले, और दिमाग है तो समझ भी ले, लेकिन आत्मकल्याण वैसे होने वाला है ही नहीं। खास करके बेंसरी के वचनामृत में इस बात को मुख्य करके उन्होंने कहा है कि पहले आत्मकल्याण की भावना, स्वरूप प्राप्ति की भावना में, तीव्र भावना में आ जाओ, ये सबसे पहले होना जरूरी है। इस भावना में आने से मुमुक्षुता के सभी स्टेज जो है वो आएंगे। अगर भावना नहीं होगी तो कोई बात होने वाला ही है ही नहीं। जो नींव का पत्थर है, फाउंडेशन का स्टोन, ये आत्मकल्याण की, सत्स्वरूप की प्राप्ति की भावना का है। इसलिए मुमुक्षु को चाहिए कि अब खुद भावना में कहां तक है। हमको आत्मस्वरूप की प्राप्ति चाहिए, किस कीमत पे चाहिए, कितनी कीमत देनी है बताइए। रुपये का माल 12 आने में लेना है, 16 आने में लेना है, या 1.25 रुपया में लेना है? या कितनी भी कीमत लग जाए लेना है? ये सवाल अपने आप को पूछना है। तो जिसमें अनंत काल का सुख मिले, संसार के अनंत दुख का नाश होवे, इसकी कीमत कितनी देनी है? ये अभिप्राय को चेक करने की बात है। क्या अभिप्राय है हमारा? वरना हम हमारी शर्त से काम करेंगे, कंडीशनल, और वो कभी होने वाला है ही नहीं। ऐसा हो तो वैसा करे, वैसा हो तो वैसा करे, इसका काम इधर नहीं है। इसका काम इधर है ही नहीं। काम इसका है कि जिसको किसी कीमत पे अपना आत्म कार्य करना ही है, इसका ही काम है। ऐसी भावना कर जिससे तेरा प्रयत्न बराबर चलेगा, तुम्हारा पुरुषार्थ यथार्थ कब चलेगा? भावना होगी तो। इसका सिद्धांत वो हुआ कि पुरुषार्थ को उत्पन्न करने वाली भावना ही है, और कोई है ही नहीं। भावना ही पुरुषार्थ की उत्पादक होती है। देखो क्या कहा कि तू सत की उंडी जिज्ञासा कर जिससे तेरा प्रयास बराबर चलेगा। मतलब कि भावना नहीं होगी तो प्रयास भी बराबर नहीं चलेगा। तेरी मति सरल सरल हो जाएगी, तेरी मति सरल हो जाएगी। सरल माने क्या है? कि आत्मकल्याण करने की सूझ आ जाएगी, पुरुषार्थ करने की सूझ आ जाएगी सरलता से। कोई दिक्कत नहीं अंदर होगी कि क्या करें, कैसे करें, वो बात नहीं होगी। मते सरल होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि कैसे हमारा काम किया जाए, ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। भावना चाहिए, मूल में भावना चाहिए। तेरी मते सरल और सुलटी होकर के आत्मा में परिणमन करेगी, परिणमित हो जाएगी, सरल भी होगी और सुलटी भी होगी, उल्टी नहीं चलेगी। क्योंकि डिसीजन लेना पड़ता है, निर्धार करना पड़ता है क्या करना क्या नहीं करना। तो उसमें जिसकी मति सरल और सुलटी होती है वो सही निर्धार करता है, वरना गलत निर्धार हो जाता है। तो ये भी सिद्धांत सिद्ध हुआ कि जिसको आत्मस्वरूप की प्राप्ति की यथार्थ भावना है उसकी मति सरल होती है, उसकी मति सुलटी हो जाती है। ये भी भावना का कार्य हुआ, भावना का कारण से हुआ। तो फिर कोई आपत्ति नहीं है। सत्य के संस्कार, अब यहां पर थोड़ी बात लिया है संस्कार की, इस वचनामृत में प्रेरणा देने के हिसाब से, प्रेरणा देने के हेतु से संस्कार की कुछ बात किया है कि सत का संस्कार गहरा डाला होगा तो अंततः दूसरी गति में भी सत में ने स्वरूप प्रकट हो जाएगा। लेकिन सत का संस्कार गहरा डालना चाहिए। कभी ऐसा बनता है कि इस जीवन में ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन जिसका जिसकी भावना चोखी है, क्या जिसकी भावना एकदम चोखी है और काम नहीं हुआ, आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो वो भावनाओं के वश संस्कार डल जाएगा और कहीं भी जाएगा दूसरी गति में, तिरिंज गति में जाएगा या देव गति में जाएगा या नारकी में, कहीं भी जाएगा, चारों गति में कहीं भी जाएगा, उस वहां उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति सुगमता से हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? सुगमता से हो जाएगी। ये सूझ अंदर से आएगी। किस कारण से? कि भावना एकदम स्पष्ट पवित्र भावना थी, मलिन भावना नहीं थी, लेकिन पवित्र भावना थी। उतनी कीमत है भावना की, उतनी कीमत है, बहुत बड़ी बात है ये। दूसरी गति में भी सत प्रकट होगा, इसलिए सत का गहरा संस्कार डालना चाहिए। कम से कम आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन इतना भावना में तो रह सकते हो। अगर उतना ही नहीं है तो कोई इलाज नहीं है, फिर इसका कोई इलाज है ही नहीं। जिसको संसार की तीव्र भावना होती है उसको स्वरूप प्राप्ति की भावना नहीं आ सकती। तो ये देखना है कि हमको भावना क्यों नहीं आती, कि हमारे संसार की भावना तीव्र है इसलिए नहीं आती है, वरना आए बिना रहे नहीं। और ऐसी ऐसी बात मिले, सामान्य मुमुक्षों को भी यहां पर ज्ञानी पुरुष ने बहुत बड़ा रिस्पांस दिया है, जो बिल्कुल सामान्य है। कोई विशेष तरक्की मोक्ष मार्ग के समीप जाने में नहीं किया है, ऐसे सामान्य मुमुक्षु को भी एक उतनी प्रेरणा दी है। एक प्रेरणास्पद विषय है वो कि तुम भावना में आ जाओ, अगर तुमको संस्कार पड़ गया तुम्हारा काम होगी हो जाएगा, इस भाव में नहीं होगा तो दूसरे भाव में हो ही जाएगा। इसलिए भावना का महत्व जो है ये बहुत है, बहुत बहुत है, मतलब इसी ग्रंथ के 21 नंबर के वचनामृत में उन्होंने लिखा है कि चैतन्य में से मैंने आत्मा में से उत्पन्न हुई स्वरूप प्राप्ति की भावना कभी निष्फल नहीं होती। अगर ऐसी भावना भी, पवित्र भावना भी निष्फल हो जाए तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े, जबकि एक परमाणु शून्य नहीं होता, नाश नहीं होता। तो 14 ब्रह्मांड में तो अनंता अनंत परमाणु, अनंत जीव, धर्मास्ते धर्मास्ते असंख्य कालाणु, आकाश, सब कुछ है, सबको शून्य होना पड़े। ऐसा कहकर के भावना में रही हुई, भावना में छिपी हुई ताकत को बताया है। कितनी बड़ी ताकत है इसमें। कुदरत को बदल दे, क्या कुदरत को? कर्म रेखा को बदल दे, इसको भी बदल दे। ये ताकत भावना में है। वो बात उन्होंने अपने अनुभव से की है। वो भावना लेकर के घर से निकल गए थे। और बोला क्या कि ये अनंत तीर्थंकरों ने कही हुई बात है। किसने कही? सभी तीर्थंकरों ने ये बात कही है। अनंत तीर्थंकर मैंने जितने भी हुए उन सबों ने ये बात कही है। भी वर्तमान में एक भी तीर्थंकर का दर्शन नहीं होता, वर्तमान में एक भी तीर्थंकर का दर्शन नहीं होता है। वो तो महाविद्या में से आए थे, पूर्व भव का जाति स्मरण ज्ञान था, और वहां सिमंदरनाथ जिनेन्द्र के समवसरण में वो जाते थे, उनकी दिव्य ध्वनि सुनते थे, वो सब बात मालूम है। तो एक तीर्थंकर के नहीं बोले, अनंत तीर्थंकर ने ये बात कही है। कितनी ठोसता है इसके पीछे, ठोसपना कितना है बात कहने में, और उसमें कुछ नहीं लगता। भावना होने में जीव का क्या लगता है वो तो बताइए, और वो भी अपनी आत्मकल्याण की भावना है। दूसरे के लिए कुछ करना हो तो दर्द हो जाए या जोर लगे, अपने आत्मकल्याण की भावना है, उसमें कुछ लगता है क्या? इसके लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता। एक घटना घटी थी कि बैंसरी के पास एक बहुत बूढ़ी औरत आई, बोलने लगी कि क्या करें, बुढ़ापा आ गया, हमारा आत्मकल्याण हुआ नहीं है, मनुष्य भव पूरा होने की तैयारी हो गई है, अब तो शास्त्र पढ़ सकते नहीं क्योंकि आंखें काम नहीं करती, आपके प्रवचन सुन सकते नहीं क्योंकि कान चले गए, और आपके पास आ सकते नहीं क्योंकि शरीर बीमार हो गया है, चल सकते नहीं, आना जाना मुश्किल है हमारा, और वृद्धावस्था है, करे भी क्या। ये परिस्थिति में हम आत्मकल्याण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो बेंस ने कहा कर सकते हैं। कैसे? कि आप तो भावना वाली है ही, तब तो ये बात बोल रही है, बस भावना बढ़ाते जाओ, न उसमें कोई शास्त्र पढ़ना है, न कोई बात सुनने की है, न कोई आने जाने की परिस्थिति है उसमें। जहां भी हो, कैसे भी हालत में हो, अपने आत्मकल्याण की भावना बढ़ाओ। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान, केवल ज्ञान तक पहुंच जाओगे। मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन तो मामूली बात है, कृपालु देव ने तो वहां तक ले दिया भावना वाले को कि तुम्हारा केवल ज्ञान हो जाएगा। तो ये सभी ज्ञानियों ने भी कही है और अनंत तीर्थंकरों ने भी यही बात की है। अपने अनुभव में कितनी बात होती है, अब है तो अपना अनुभव कहने वाले को कि मेरे अनुभव के साक्षी कौन कौन है, कि अनंत तीर्थंकर मेरे अनुभव के साक्षी है। कितना ठोस पना है। और अनंत तीर्थंकर होने में तो अनंत काल लगा, अनुभव वर्तमान समय में होता है और ज्ञान हुआ अनंत काल का। केवल ज्ञान तो बाद में होगा, बिना केवल ज्ञान अनंत काल का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? अनंत तीर्थंकरों ने ये बात कही है और अनंत तीर्थंकर यही बात कहेंगे, उसमें सब ज्ञानी मुनि गुरु सब आगे। उसमें एक वर्तमान अनुभव में तीन काल का ज्ञान होता है, इसलिए अनुभव ज्ञान को केवल ज्ञान की जाति का एक अंश बताया गया है। वो अनुभव प्रकाश में आया कि नहीं आया? केवल ज्ञान जाति का एक अंश है, एक अंग है, वो इस कारण से है। जिसको आत्मा का अनुभव होता है ना, उनको तीनों काल के ज्ञानियों का ज्ञान हो जाता है। कैसे? कि जिस तरीका से, जिस विधि से, जैसा मुझे अनुभव हुआ, तीनों काल के ज्ञानी को ऐसा ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कि एक वैज्ञानिक परिस्थिति है, सभी आत्मा एक जाति के हैं, इसलिए सभी आत्मा का गुण धर्म रूप विज्ञान है, वो एक जाति का है। तो फिर इसकी परिस्थिति भी वैज्ञानिक होने से एक जाति की होती है, इसमें तीन काल का ज्ञान आ जाता है। इस तरह से अनुभव कितने समय का? फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड, एक सेकंड का कुछ अंश में अनुभव होता है, पूरा सेकंड नहीं चलता। और ज्ञान होता है तीन काल का। देखो, और उसको विश्वास आ जाता है, अल्पकाल में मेरी मुक्ति होगी ही, अल्पकाल में मेरी मुक्ति हो ही जाएगी, उतना विश्वास और प्रतीति होने पर भी उसको उसकी दरकार नहीं है। कृपालु देव का 165 नंबर का एक पत्र है, 1947 में समकित शुद्ध समकित मैंने पवित्र समकित का प्रकट होना हुआ, 1947 का पहला पत्र है, 24 साल का पहला पत्र है। लिखते हैं कि हमको ज्ञान प्राप्ति हो गई है, उसमें हमको कोई शंका है ही नहीं। मोक्ष तो होगा ही, लेकिन हमको हमारा प्रत्यक्ष आत्मस्वरूप जो वेदन में आता है, अनुभव में आता है, इसके आगे हमको मोक्ष की जरूरत भी लगती नहीं, क्योंकि हमारा स्वरूप प्रकट है, प्रत्यक्ष है, हमारे पास है, कहीं दूर तो है ही नहीं। अब मोक्ष की क्या जरूरत है, फिर भी मोक्ष हुए बिना रहेगा नहीं। ये पर्याय बुद्धि चले जाने से मोक्ष की जरूरत नहीं, ऐसा लिखा। तो ये बात जिसको भी अनुभव होता है उसको वैसा ही होता है, सभी ज्ञानियों को ऐसा ही होता है, दूसरे प्रकार से किसी को नहीं होता, वो मालूम पड़ जाता है अपने अनुभव से, सबकी मालूम पड़ जाती है। तो वो जान सकते हैं कि कौन कौन ज्ञानी हुए, कैसे हुए, कौन ज्ञानी है, कौन ज्ञानी नहीं है, वो सब जान लेते हैं। उतना ही नहीं, ज्ञानी है माने देहातीत दशा वाले हैं। कैसे हैं? देहातीत दशा है, भक्ति करते हैं कि जिस देह होने पर भी जिसकी दशा देहातीत है, ऐसे ज्ञानियों के चरण कमल में हमारे वंदन हो जाओ। आत्मसिद्धि शास्त्र की अंतिम पंक्ति है, देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी मैंने जे जे एवा ज्ञानी छे ते सभी ज्ञानी में, ते ज्ञानी ना चरण मा वंदन हो अगणित। एक दो नहीं, गिन नहीं सके उतना। ज्ञानी को ज्ञानी के प्रति उतनी भक्ति आती है। क्या? ज्ञानी को ज्ञानी के प्रति उतनी भक्ति आती है, तो मुमुक्षु को कितनी आनी चाहिए, 83 लगा देना। और वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए, यही स्थिति की वास्तविकता है, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा हुए बिना आत्मज्ञान की प्राप्ति किसी को होती ही नहीं, और होगी भी नहीं। यहां भी अपने आत्मकल्याण की प्रगाढ़ परम अवगाढ़ भावना में रहना है, फिर आगे का काम आसान है। अगर ये नहीं है तो ये काम कठिन लगता है। भावना नहीं है तो कठिन लगता है, भावना होता है तो कठिन नहीं लगता। कितना सरल कर दिया है, कोई तकलीफ हो तो बता दो, उसमें क्या तकलीफ पड़ती है उसमें बताइए, कोई तकलीफ होवे नहीं, ऐसी बात है। ये तो सभी प्रकार की तकलीफ मिटाने की बात है, होने की तो बात है ही नहीं। इसलिए उमंग से, उल्लासित वीर्य से भावना में आकर के अपना काम चालू कर देना चाहिए। यहां तक रखें।